معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ 5 ہے، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول بلائنڈ مشن. اس کے مصنف مظہر کلیم ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف. یہ پہلے داجل جزیرے پر پہنچے، وہاں سے یہ لوگ ہارڈی کی لانچ میں یہاں پہنچے ہیں. تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے، چیف کو علم ہے. مارک نے دانستہ ساری تفصیل بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا. اوہ، بہرحال اب تو یہ کیچوے بن چکے ہیں، براؤن نے کہا. ہاں، میں نے اسی لیے انہیں ایلکس چیئر پر ڈلوایا ہے تاکہ ان کا باقی ماندہ زہر بھی ختم ہو جائے. اوکے، مارک نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے سامنے موجود مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد اسکرین پر جھماکا سا ہوا اور ایک منظر ابھر آیا. یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ نیلے رنگ کے کسی میٹیریل سے بنی ہوئی کرسیاں موجود تھیں، جن پر چار افراد بیٹھے تھے اور ان کے جسموں کے گرد نیلے رنگ کی دھات سے بنے ہوئے راڈز موجود تھے. ایک راڈ ان کی گردن ٹانگوں کے گرد اور ایک سینے کے گرد موجود تھا. ان چاروں کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں. مارک کافی دیر تک انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. یس، دوسری طرف سے چیف کی قدرے چیختی ہوئی اور کرپٹ اور ناگوار سی آواز سنائی دی. مارک بول رہا ہوں باس، مارک نے ہلکے سے تنزیہ لہجے میں کہا. اب کیا ہو گیا ہے؟ چیف نے اسی طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا. چیف، وہ چاروں افراد زندہ حالت میں اب بلو روم میں آپ کے منتظر ہیں، مارک نے کہا. کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ چیف نے یکلف غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا. میں درست کہہ رہا ہوں چیف، اور اسی لیے میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا اور صرف ریز اٹیک سے بے ہوش کیا ہے، ورنہ شاید آپ کو میری بات کا کبھی یقین نہ آتا، مارک نے کہا. کیا تم واقعی درست کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہارڈی کی مجھ سے بات ہوئی ہے، چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. چیف، لانچ میں تو ہارڈی کی لاش تک موجود نہیں ہے، البتہ ان میں سے ایک نے ہارڈی کا بڑا کامیاب میک اپ کیا ہوا ہے اور میں بھی اسے اسکرین پر دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے گرین راڈ اسکرین لگائی تو میک اپ کے نیچے سے اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا. اس کے بعد میں نے انہیں ریڈ ڈریس سے بے ہوش کیا اور پھر براؤن نے اور اس کے آدمیوں نے اس کو بلو روم میں پہنچا دیا ہے. اب آپ بے شک اپنے ہاتھوں سے انہیں ہلاک کر دیں، مارک نے قدرے فاتحانہ لہجے میں کہا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلسل دھوکہ دیا جاتا رہا ہے. میں اب ان دھوکے بازوں کو آسانی سے نہیں مرنے دوں گا، میں ان کا عبرت ناک حشر کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا. یس چیف، وہ واقعی اسی قابل ہیں، مارک نے جواب دیتے ہوئے کہا. تم بلو روم میں پہنچو، میں بھی وہیں آ رہا ہوں، چیف نے غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو مارک نے ریسیور رکھ کر اپنے سامنے موجود مشین کو آف کیا اور پھر اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. عمران کے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑی تو اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی مدھم پڑنے لگی، اور پھر جیسے جیسے اس کا ذہن روشن ہونے لگا ویسے ویسے درد کی لہریں بھی بڑھتی گئیں، اور پھر جیسے ہی اس کا ذہن پوری طرح روشن ہوا اس کے ذہن میں بھی بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر یکلف گھومنے لگا. وہ ہارڈی کی لانچ میں اپنے ساتھیوں سمیت راڈ جزیرے کے خفیہ گھاٹ میں داخل ہو کر 05 تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا. ہارڈی کی لاش کے ساتھ سردار تاگوئی کی لاش کو بھی انہوں نے لوہے کا بھاری ٹکڑا باندھ کر سمندر میں پھینک دیا تھا تاکہ ان کی لاشیں اوپر کنارے تک نہ آ سکیں. ہارڈی سے چونکہ عمران تفصیل سے سب کچھ معلوم کر چکا تھا، اس لیے جب اسے پہلے سیٹلائٹ فون پر جو اس نے سردار تاگوئی سے حاصل کیا تھا گریٹ مین کی کال آئی تو اس نے سردار کی آواز اور لہجے میں ان سے بات کی تھی اور اسے مطمئن کر دیا تھا کہ ہارڈی چاروں ایجنٹوں کی لاشیں لے کر چلا گیا ہے. اس کے بعد لانچ کے مخصوص ٹرانسمیٹر پر گریٹ مین کی کال آ گئی تو گو اسے سردار تاگوئی کے لیے آنے والی کال سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ہارڈی کے جسم میں ایسا آلہ موجود تھا جو ہارڈی کی موت پر رات جزیرے کی مشین کو ریڈ کوشن دیتا تھا. और बकौल ग्रेट मैन हार्डी का रेड कॉशन मशीनरी को मिल रहा था, लेकिन इमरान ने हार्डी की आवाज और लहजे में इसकी नफी कर दी। और हार्डी से ही उसे मालूम हुआ था कि मशीनरी का इंचार्ज मार्क नामी आदमी है, इसलिए उसने जानबूझकर मार्क का नाम लेकर मशीनरी की खराबी का इंदिया दिया था। और जिस अंदाज में ग्रेट मैन उसकी बात पर मुतमईन हुआ था, उससे इमरान समझ गया था कि इसकी कोशिश कामयाब साबित हुई है। लेकिन उसके बावजूद, चूंकि उसे खतरा था कि जजीरे से जदीद तरीन आलात की मदद से लॉन्च के अर्से को भी स्क्रीन पर चेक किया जा सकता है, इसलिए उसने हार्डी का ना सिर्फ अपने चेहरे पर मेकअप कर लिया था, बल्कि उसे समंदर में फेंकवाने से पहले उसका उतरा हुआ लिबास भी उसने पहन लिया था, क्योंकि इमरान कदो कामत में किसी हद तक हार्डी के बराबर ही था। लेकिन 05 पहुंच कर वो जैसे ही लॉन्च से उतर कर एक कमरे में दाखिल हुआ तो छत से उन पर सुर्ख रंग की रोशनी का धारा पड़ा और उसके साथ ही इमरान का जहन गहरी तारीकी में डूबता चला गया। और अब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो अपने साथियों समेत नीले रंग की किसी की धात की बनी हुई कुर्सियों पर मौजूद थे। उनके जिस्मों के गिर्द नीले रंग के ही दो रॉड्स मौजूद थे, जिनमें से एक उसकी टांगों के गिर्द और दूसरा उसके सीने के गिर्द था। कमरे की दीवारों, फर्श और छत का रंग भी गहरा नीला था। कमरे की एक दीवार के साथ टॉर्चिंग के इंतहाई जदीद सामान के साथ साथ एक जदीद तरीन मेकअप वॉशर भी मौजूद था। इसके साथ साथ इमरान को महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म बेहिस हो चुका हो, हालांकि जिस्म के अंदर दर्द की तेज लहरें दौड़ रही थी। लेकिन उसके बावजूद जब उसने लाशौरी तौर पर अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की तो ये हरकत खासी सुस्त थी। इसके साथ इमरान को हल्की सी ठंडक का एहसास भी हो रहा था। उसके सामने एक आम सी ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर एक चौड़े चेहरे वाला आदमी बैठा नजर आ रहा था, जिसके साथ दूसरी कुर्सी पर एक और आदमी मौजूद था। लेकिन इस आदमी को देखकर ही फौरन महसूस हो जाता था कि ये आदमी फील्ड का नहीं है, बल्कि मशीनरी का कोई माहिर हो सकता है। इन दोनों के पीछे दो कवि हेकल आदमी, जिनके सर गंजे थे और उन्होंने गहरे नीले रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था, खड़े थे। इमरान के दाएं बाजू में भी शदीद दर्द था और उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म में दर्द की दौड़ती हुई लहरों का मंबा बाजू ही है, इसलिए वो फौरन समझ गया कि उसके बाजू में कोई इंजेक्शन लगाया गया है, जिसकी वजह से दर्द की तेज लहरें उसके जिस्म में दौड़ रही हैं। और इसी दर्द की वजह से उसे होश आया है। उसने गर्दन घुमाकर अपने साथियों की तरफ देखा तो वो सब भी होश में आने के मराहिल से गुजर रहे थे कि उनके चेहरों पर लाशौरी तौर पर उभर आने वाली तकलीफ के तासुर बता रहे थे कि उनके जिस्मों में भी दर्द की तेज लहरें दौड़ रही हैं। फौरी तौर पर इमरान के जहन में जिस खतरे ने घंटी बजाई थी वो उसके जिस्म की हरकत का सुस्त होना था। एक बार तो उसे ख्याल आया कि शायद जिस्म को बेहिस करने का कोई इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन दूसरे लम्हे उसने ये ख्याल मुस्तरद कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर उसके जिस्म में दर्द की तेज लहरें ना दौड़ सकती थी। और वो यही सोचने लगा कि ऐसा क्यों और किस वजह से हो सकता है। फिर चंद लम्हों बाद ही उसके जहन में एक धमाका सा हुआ और बात उसकी समझ में आ गई। उसे याद आ गया कि उसने काफी अर्सा पहले नीले रंग की खसूसी धात एलिक्स के बारे में पढ़ा था कि इस धात की खासियत यह है कि ये इंसानी जिस्म को बेहिस कर देती है। उसके साथ ही उसे ये याद आया कि इसका फौरी तोड़ भी लिखा गया था और वो तोड़ था सादा पानी। लेकिन इमरान ने इस वक्त इस पॉइंट पर सोचा था कि अगर इस धात की वजह से इसका जिस्म बेहिस हो जाए और पानी भी मयसर ना हो तो फिर इस सुस्ती से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। और इमरान के जहन में इसका यही तोड़ आया था कि वो मुसलसल लुआबे दहन को निगलता रहे तो किसी हद तक पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। तुम नकली हार्डी बने हुए हो, क्या नाम है तुम्हारा? अचानक सामने बैठे हुए चौड़े चेहरे वाले आदमी ने कहा तो इमरान उसकी आवाज सुनते ही समझ गया कि वो वाकई ग्रेट मैन है, सांगर का चीफ। मेरा नाम अली इमरान है, MSc DSc ऑक्सन, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब, क्या तुम साइंसदान हो? ग्रेट मैन ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, डिग्रियां सुन लेने के बावजूद भी तुम्हें शक है, क्यों? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जो भी हो, बहरहाल अब तुम्हें हर हालत में मरना होगा अपने साथियों समेत, ग्रेट मैन ने यकलक फुसीले लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे किसी अदालत का जज मुल्जिम को सजाए मौत का फैसला सुना रहा हो। मौत तो बरहक है ग्रेट मैन, और सभी को आनी है, हमें भी और तुम्हें भी। और तुमने अगर हमारे बारे में कोई फैसला कर ही लिया है तो फिर धमकियां देने की क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम वैसे ही अहमकों की तरह मुंह उठाए तुम्हारे इस हेडक्वार्टर में घुस आए हैं? इमरान के लहजे में संजीदगी के साथ साथ हल्का सा तंज भी शामिल था। हमने तुम्हारे सामान की तलाशी ले ली है और हमारे पास तुम्हारा सामान मौजूद है, और तुम इस वक्त जिन कुर्सियों पर मौजूद हो, ये कुर्सियां इंसान को हरकत करने से माजूर कर देती हैं। इसके बावजूद तुम रॉड्स में जकड़े हुए हो, इसलिए तुम चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, इस वक्त तुम हकीर कैचवे से भी बदतर हो। ग्रेट मैन ने बड़े हकारत भरे लहजे में कहा, ठीक है, मुझे मालूम है कि तुमने अपनी तरफ से तमाम तरीके आजमा रखे हैं, लेकिन जब तक हमारी मौत का वक्त नहीं आएगा, इस वक्त तक तुम्हारा कोई भी तरीका हमारी मौत नहीं बन सकेगा। मुझे मालूम है कि ये एलिक्स धात क्या होती है और किस तरह काम करती है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान तो हर लम्हे मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदा रहता है, और उल्टा मौत हमारी उस वक्त तक हिफाजत करती है जब तक अल्लाह ताला की तरफ से वक्त मुकर्ररा नहीं आ जाता। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने शोग्रान साइंसदान चियांग के बेटे शोकाई को अगवा करके कहाँ रखा हुआ है? तुम्हारे हार्डी से मैंने पूछा था, लेकिन उसे मालूम ही ना था। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, शोकाई जहाँ है वहाँ तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं जा सकता। गेटमैन ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तो फिर अब तुम्हारा क्या फैसला है? तुम शोकाई को हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो या हम आज खुद उसे निकाल लें? लेकिन ऐसी सूरत में तुम और सांगर का हेडक्वार्टर सब कुछ तबाह हो जाएगा। बोलो, आखिरी फैसला करो ताकि मेरे साथी जिस इकदाम का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं वो इकदाम अमल में लाया जाए। इमरान ने कहा तो ग्रेट मैन बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात थे। मार्क, ये लोग जिस तरह से मुतमईन हैं, इससे मुझे खतरा महसूस हो रहा है। ग्रेट मैन ने इस बार साथ बैठे हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा, और इमरान समझ गया कि हार्डी ने जिस मशीनरी इंचार्ज मार्क के बारे में बताया था, ये वही आदमी है और यकीनन उसने इन्हें बेहोश करके यहाँ डलवाया है। हाँ, ये लोग बेहद तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए ये ऐसी बातें करके और ये ऐसे अंदाज इख्तियार करके दूसरों को परेशान कर देते हैं। आप कतई बेफिक्र रहें, ना ये हरकत कर सकते हैं और ना ही ये रॉड से निजात हासिल कर सकते हैं। वैसे इन्हें ज्यादा वक्त देना भी नहीं चाहिए। आप एक लम्हे में इनका खात्मा कर दें, मार्क ने जवाब देते हुए कहा। तुम फील्ड के आदमी नहीं हो मार्क, तुम्हारा ताल्लुक सारी उम्र सिर्फ मशीनरी से रहा है, इसलिए तुम्हारा इन्हिसार मशीनरी पर ही रहता है। लेकिन मशीनरी को दो धारी तलवार कहा जाता है जो बाज़ औक़ात अपनों का गला भी काट देती है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, इन्हें मजीद वक्त देना हिमाकत ही है। ग्रेट मैन ने यकलक उठ कर खड़े होते हुए कहा। उसके उठते ही मार्क भी उठ खड़ा हुआ। रॉकी और बैरो, ग्रेट मैन ने मुड़कर दोनों गंजों से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, दोनों गंजों ने बयक वक्त होकर कहा। दोनों का लहजा बेहद मुअद्दबाना था। इन सबको गोलियों से उड़ा दो और फिर इनकी लाशें समंदर में बहा देना। ग्रेट मैन ने इन दोनों से मुखातिब होकर तय कुमाना लहजे में कहा। यस बॉस, अभी लें। दोनों ने ही बड़े फुर्तीले से लहजे में कहा और हाथों में मौजूद मशीन गने ऊपर कर ली। एक मिनट रुक जाओ, अचानक इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो ग्रेट मैन ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फिर वापस मुड़कर इमरान और उसके साथियों की तरफ देखने लगा। क्या तुम रहम की अपील करोगे? लेकिन मेरे पास दुश्मनों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती, ग्रेट मैन ने कहा। रहम नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने तो बहरहाल मारे जाना ही है, क्योंकि जिस खेल के हम खिलाड़ी हैं उस खेल में हर लम्हे उसका खतरा मौजूद रहता है। मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि अपने आदमियों से कह दो कि हमें गोलियां मारने से पहले हमें पानी ही पिलवा दें, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जब तुमने मर ही जाना है तो फिर पानी पीकर मरने और प्यासा मरने में क्या फर्क पड़ता है, ग्रेट मैन ने तंजिया लहजे में कहा। जिस दिन के हम मानने वाले हैं इसमें फर्क पड़ता है, और तुम्हें इससे क्या खतरा है? हम तो इस बार वाकई बेबस हुए बैठे हैं, इमरान ने जवाब दिया। बॉस, ये लोग कोई ना कोई चक्कर चलाना चाहते हैं, मार्क ने कहा तो ग्रेटमैन बेख्तियार चौंक पड़ा। चक्कर चलाना चाहते हैं? क्या मतलब? क्या ये पानी पीकर रॉड्स खोल लेंगे या उनके पास असलहा आ जाएगा? क्या चक्कर चला सकते हैं ये? ग्रेटमैन ने खतरे को सीधे लहजे में कहा। नहीं बॉस, ये ना ही रॉड्स खोल सकते हैं और ना ही हरकत कर सकते हैं, मार्क ने खतरे परेशान से लहजे में जवाब देते हुए कहा। बैरो, ग्रेटमैन ने कहा। यस बॉस, एक गंजे ने कहा। आगे जाकर रॉड चेक करो, ग्रेटमैन ने दूसरी दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस बॉस, एक गंजे ने कहा और तेजी से इमरान और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने बारी बारी सबके रॉड्स चेक किए। ये ओके हैं बॉस, बैरो ने वापस मुड़ते हुए कहा। ठीक है, इन्हें पानी पिलाओ और फिर इन्हें गोलियों से उड़ा दो, ग्रेटमैन ने कहा। यस बॉस, बैरो और रॉकी दोनों ने कहा और फिर कोने में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। बैठ जाओ मार्क, मैं अब देखना चाहता हूँ कि ये क्या चक्कर चला सकते हैं, ग्रेटमैन ने मार्क से मुखातिब होकर कहा। बॉस, यकीन करें कि ये कोई चक्कर नहीं चला सकते, मार्क ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिर तुमने पहले ऐसी गलत बात क्यों की, ग्रेटमैन ने इस पर चढ़ाई करते हुए कहा। सॉरी बॉस, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया, मार्क ने फौरन ही माजरत करते हुए कहा। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा सोच समझ कर बात मुंह से निकाला करो, ग्रेटमैन ने सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, मार्क ने धीमे लहजे में जवाब दिया। उसी दौरान दोनों गंजों ने अलमारी के करीब ही अपने मशीन गने रखी और दोनों हाथों में पानी की बोतलें उठाए वो वापस मुड़े। एक इमरान की तरफ आया जो कतार के एक किनारे पर था और दूसरा जोसेफ की तरफ बढ़ा जो कतार की दूसरी तरफ था। एक बोतल नीचे रखकर दूसरी बोतल खोली गई और फिर उसका दहाना इमरान के मुंह में डाल दिया गया। इमरान इस तरह पानी पीने लगा जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है। पूरी बोतल पी लेने के बाद उस गंजे ने बोतल एक तरफ फेंकी और नीचे पड़ी हुई दूसरी बोतल उठाकर वो टाइगर की तरफ बढ़ गया, जबकि दूसरा जोसेफ के बाद अब उसके करीब बैठे जवानों को पानी पिला रहा था। पानी पीते ही इमरान के जिस्म में हरकत फौरन ही मामूल पर आ गई और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग साइड पर मोड़ी। ग्रेटमैन और मार्क दोनों ही अब टाइगर और जवाना की तरफ देख रहे थे जिन्हें पानी पिलाया जा रहा था, इसलिए वो इमरान की तरफ मुतवज्जा ही ना थे। इमरान की टांग मुड़कर कुर्सी के अगली पाई के पीछे पहुंच गई और चंद लम्हों बाद ही इमरान का पैर उस बटन पर पहुंच गया जिसे ऑपरेट करने से रॉड खुल सकते थे। क्योंकि जिस धात से ये कुर्सियां बनाई गई थीं, इस धात के असरात ऐसे थे कि इस पर बैठने वाले का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही बेहिसो हरकत हो जाता था, इसलिए इस बटन को कुर्सी पर बैठते हुए शख्स की तरफ से किसी तरह भी ऑपरेट ना किया जा सकता था, इसलिए इसे आम अंदाज में बनाया गया था। दोनों दोनों गंजे इमरान और उसके साथियों को पानी पिलाकर मुड़े और फिर वो कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ने लगे। उसी लम्हे इमरान ने पैर पर दबाव डाला और उसके साथ ही कटाक कटाक की मखसूस आवाजें कमरे में किसी बम की तरह गूंजी और वो दोनों गंजे रुक कर तेजी से मुड़े, जबकि ग्रेट मैन और मार्क दोनों बिजली की सी तेजी से उठकर खड़े हुए ही थे कि इमरान किसी भूखे उकाब की तरह उड़ता हुआ उन दोनों से जा टकराया और वो दोनों चीखते हुए कुर्सियों समेत पुश्त के बल नीचे गिरे। जबकि इमरान कलाबाजी खाकर सीधा हुआ ही था कि रेड रेड की तेज आवाजों से कमरा गूंज उठा, लेकिन इमरान किसी पारे की तरह तड़पा और गंजे की तरफ से चलाई गई मशीन पिस्टल की गोलियां उसके करीब से निकली ही थी कि यकलख्त कटाक कटाक की तेज आवाजें दोबारा सुनाई दी और उसके साथ ही जुआना ने यकलख्त कुर्सी पर बैठे बैठे कलाबाजी खाई और फिर उसी लम्हे उस गंजे ने जो इमरान पर फायर कर रहा था तेजी से गर्दन मोड़ी ही थी कि इमरान पारी की तरह तड़पा और दूसरे लम्हे दूसरा गंजा घूम कर अपनी साइड पॉकेट से मशीन पिस्टल निकाल कर घूमते हुए इमरान पर फायर खोलना चाहता था। चीखता हुआ हवा में उछला और दूसरे लम्हे ग्रेटमैन और मार्क दोनों से किसी तोप के गोले की तरह जा टकराया। इमरान ने एक लम्हे में सिचुएशन को समझ लिया था, वो खाली हाथ था जबकि दोनों गंजे मशीन पिस्टल से मुसल्ला थे और उसके साथ साथ यकीनन मार्क नहीं तो ग्रेटमैन लाजमन मशीन पिस्टल से मुसल्ला होगा, इसलिए अगर उन्हें फौरी कवर ना किया जाता तो इमरान तीन मुख्तलिफ जावियों पर मौजूद मशीन पिस्टल से संग आर्ट के बावजूद ना बच सकता था। इधर जुआना ने कलाबाजी खाई तो वो गंजा जो इमरान पर फायर खोल चुका था के जिस्म का रुख तेजी से जुआना की तरफ मुड़ा ही था कि दूसरे लम्हे कमरा एक खौफनाक धमाके और इंसानी चीख से गूंज उठा। जुआना ने बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खाते हुए दोनों टांगे पूरी कुव्वत से उस गंजे के सीने पर मार दी थीं। और उसकी टांगों की जरब से वो कभी हैकल गंजा तोप से निकलने वाले गोले की तरह उड़ता हुआ अकबी दीवार से खौफनाक धमाके से जा टकराया और फिर किसी गठरी की तरह नीचे गिरकर साकित हो गया, जबकि अचानक जरब लगने से उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल उछलकर साइड पर गिरने ही वाला था कि जरब लगाकर कौस की सूरत में गोता खाकर सीधे होते हुए जवाना ने हवा ही में उसे मशीन पिस्टल को झपट लिया और पलक झपकने से भी कम अरसे में रेड रेड की आवाजों के साथ ही दूसरा गंजा चीखते हुए नीचे गिरा और तड़पने लगा। और उसके साथ ही ग्रेटमैन और मार्क दोनों ने जो उठने की कोशिश कर रहे थे बेख्तियार दोनों हाथ अपने सरों पर रख लिए। दोनों का रंग जर्द पड़ चुका था। इन दोनों को हलाक मत करना, इमरान ने जवाना से कहा। मुझे मालूम है मास्टर, इसलिए तो अब तक ये जिंदा नजर आ रहे हैं, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़कर दूसरे गंजे के हाथ से निकलकर एक तरफ गिरा हुआ मशीन पिस्टल उठा लिया। अगर तुम दोनों कोई गलत हरकत नहीं करोगे तो जिंदा रहोगे, वरना, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो, हम तुम्हें यहाँ से खुद बाहर भिजवा देंगे, ग्रेटमैन ने कांपते हुए लहजे में कहा। तुम दोनों फिलहाल कुर्सियों पर बैठ जाओ, चलो आगे बढ़ो, इमरान ने कहा। माफ कर दो, मार्क ने आगे बढ़ने के बजाय वहीं खड़े खड़े कहा, लेकिन दूसरे लम्हे रेड रेड की आवाजों के साथ ही वो चीखता हुआ नीचे गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। ये फायरिंग इमरान ने की थी। जो मेरी बात नहीं मानता उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, और तुम भी अभी यहीं खड़े रहो, चलो कुर्सी पर बैठो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। तो ग्रेटमैन, जिसकी वहीं खड़े खड़े टांगे कांप रही थी, लड़खड़ाते हुए अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन कुर्सी के करीब पहुंचते ही वो यकलख्त बिजली की सी तेजी से मुड़ा और दूसरे लम्हे इमरान उछल कर एक धमाके से पुश्त के बल नीचे गिरा। लेकिन उसी लम्हे रेड रेड की तेज आवाजों के साथ ही इमरान को जरब लगाकर हवा में कलाबाजी खाकर जवाना की तरफ पलटने वाला ग्रेटमैन फजा में ही चीखता हुआ एक तरफ धमाके से जा गिरा। उसके गिरने का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे छत से कोई छुपकली नीचे गिरती है। गोलियां उसके कूल्हे और टांगों पर पड़ी थीं। उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की लेकिन फिर नीचे गिरकर साकित हो गया। गुड शो, इसमें वाकई फुर्ती थी, इमरान ने जो इस दौरान उठकर खड़ा हो चुका था तहसीन आमेज लहजे में कहा। मास्टर, ये शख्स वाकई धोखा देने का माहिर था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कांपता और लड़खड़ा था ये आदमी इस कदर तेजी और फुर्ती का मुजाहरा भी कर सकता है, जुआना ने आगे बढ़ते हुए कहा। अलमारी में मेडिकल बॉक्स मौजूद होगा, वो निकालो ताकि इसके जख्मों से खून का इखराज रोका जा सके, वरना ये बगैर बताए ही हलाक हो जाएगा, इमरान ने कहा और फौरन आगे बढ़कर उससे पहले टाइगर की कुर्सी के अकब में जाकर रॉड्स खोले और फिर वो जोसेफ की तरफ बढ़ गया। जुआना ने तो रॉड्स तोड़ लिया था, लेकिन तुम इसे नहीं तोड़ सके, क्यों? इमरान ने जोसेफ की कुर्सी के कक्ष में जाकर रॉड्स खोलने वाला बटन को प्रेस किया और सर्द लहजे में कहा। मैंने दानिश्ता ऐसी कोशिश नहीं की बॉस, क्योंकि फादर जोशुआ का ने कहा है कि लड़ने वालों की ज्यादा भीड़ एक दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है, जोसेफ ने उठते हुए बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद जब ग्रेट मैन के जख्मों की बैंडेज कर दी गई तो इमरान की हिदायत पर जवाना ने उसे उठाकर एक कुर्सी पर डाल दिया। वो टाइगर ने कुर्सी के अकब में जाकर बटन प्रेस किया तो रॉड उसके जिस्म के गिर्द नमूदार हो गए। अब मैं इससे मालूमात हासिल करता हूँ, तुम मशीन गने और मशीन पिस्टल ले आओ और जजीरे पर मौजूद तमाम अफराद का खात्मा कर दो, टाइगर तुम्हें लीड करेगा, इमरान ने कहा और तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। टाइगर, हार्डी से जजीरे के बारे में जो मालूमात मैंने हासिल की थी वो तुमने भी सुनी थी, इसलिए पहले जाकर यहाँ का मशीन रूम तबाह कर दो, इसके बाद बाकी शिकार आसान हो जाएगा, इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया और चंद लम्हों बाद ही वो तीनों असलहा लेकर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। ब्राउन अपने ऑफिस में बैठा इन तीनों अजनबियों के बारे में सोच रहा था, जिन्हें इसने अपने साथियों की मदद से 05 से उठाकर ब्लू रूम में पहुंचाया था। गो इसने मार्क से उनके बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मार्क ने उसे मुख्तसर सा जवाब देकर टाल दिया था। मार्क के मुताबिक ये पाक एशियाई एजेंट थे तो शोगरानी साइंसदान के अगवा शुदा बेटे की रिहाई के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने हार्डी को हलाक करके लांच पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस मुख्तसर सी बात के पीछे जो भयानक पस मंजर मौजूद था, इसने ब्राउन को तशवीश में मुब्तिला कर रखा था। वो यहाँ रॉस आइलैंड पर वाकई सांगर के हेडक्वार्टर का सिक्योरिटी इंचार्ज था और मार्क चूके मशीनरी इंचार्ज था, इसलिए ओहदे के लिहाज से मार्क की अहमियत ब्राउन से ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद ब्राउन चूके फील्ड का आदमी था और इसकी पूरी जिंदगी लड़ते भिड़ते हुए गुजरी थी, इसलिए बेशुमार ऐसे सवाल उसके जहन में मौजूद थे जिनके जवाब उसे नहीं मिल रहे थे। कुछ सोचकर उसने यही फैसला किया कि वो मार्क से इन सवालों के जवाब मालूम करे, क्योंकि चीफ से तो ऐसी बात करना अपनी मौत को खुद दावत देने के मुतरादिफ था। इसलिए उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ब्राउन बोल रहा हूँ, मार्क से बात कराएं, ब्राउन ने अपने लहजे को दानिश्ता बारो बनाते हुए कहा। मैं मार्क को बोल रहा हूँ, मार्क का असिस्टेंट। बॉस चीफ समेत इस वक्त ब्लू रूम में मौजूद हैं, दूसरी तरफ से कदरे मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। कब गए हैं, ब्राउन ने पूछा। तकरीबन नصف घंटा हो गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। वो लोग जिन्हें हमने ब्लू रूम में पहुंचाया था, क्या अभी जिंदा हैं, ब्राउन ने गैर इरादी तौर पर सवाल किया। यस सर, उनसे तो पूछ गछ हो रही है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। अच्छा, जब मार्क वापस आए तो उनसे कहना कि मुझे फोन कर लें, ब्राउन ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और ब्राउन ने रिसीवर रख दिया। काश मैं भी इस पूछ गछ में शामिल होता, ब्राउन ने होठ चबाते हुए कहा। अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसे ख्याल आया था कि दुश्मनों के पास जो सामान था वो तो यहाँ वो अपने साथ ले आया था, और अगर चीफ ने इस सामान को देखना चाहा तो लामहाला वो उसे कॉल करके सामान समेत ब्लू रूम में बुलवाएगा। चुनाचे वो काफी हद तक मुतमईन होकर बैठ गया। सिक्योरिटी स्टाफ में उसके मातहत 8 तरबियत याफ्ता अफराद थे। उनका काम हेडक्वार्टर में मौजूद मनशियात के बड़े बड़े स्टोर्स की हिफाजत करना था, क्योंकि दीगर माफिया और तंजीमें अक्सर एक दूसरे के स्टोर्स पर छापे मार कर करोड़ों डॉलर मालियत की मनशियात उड़ा ले जाती थी। गो सांगर माफिया इस कदर मजबूत और ताकतवर थी कि आज तक किसी को भी यहाँ छापा मारने की जरूरत ना हो सकी थी। लेकिन इसके बावजूद वो इंतहाई मुस्तैदी और होशियारी से मनशियात के स्टोर्स की मुसलसल निगरानी और हिफाजत करते रहते थे। ब्राउन का बाकायदा ऑफिस था, जबकि उसके मातहत अलहदा बड़े कमरे में बैठते थे, जिसे सिक्योरिटी हॉल कहा जाता था। वो हर आधे घंटे बाद स्टोर्स का राउंड करते थे। ब्राउन ने रिमोट कंट्रोल की मदद से अपना टीवी ऑन किया और वो उसमें मगन हो गया। लेकिन उसका जहन बार बार यही सोच रहा था कि न जाने कब चीफ की तरफ से कॉल आ जाए। लेकिन न जाने क्या बात थी कि काफी तवील वक्त गुजर जाने के बावजूद भी कोई कॉल ना आ रही थी, और ना ही चीफ के मार्क को कॉल करके वो इनसे पूछ सकता था। वो भी जहनी तौर पर इसी उधेड़ बुन में गुम था कि अचानक पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और उसने चौंक कर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, ब्राउन बोल रहा हूँ, ब्राउन ने कहा। रॉकी बोल रहा हूँ 3S से, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो ब्राउन बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि 3S के तहत जजीरे के एक ऊंचे और घने दरख्त पर एक छोटा सा केबिन बना हुआ है, जहां एंटी एयरक्राफ्ट गनें नस्त थीं, जिनकी मदद से जजीरे पर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर या निचली परवास करते हुए तैयारों को निशाना बनाया जा सकता था। ब्राउन ने तो ये सोचकर रिसीवर उठाया था कि चीफ की कॉल होगी और वो उसे ब्लू रूम में बुला रहा होगा, लेकिन खिलाफ तवक्का रॉकी की कॉल ने उसे चौंका दिया। क्यों कॉल की है, कोई खास बात, ब्राउन ने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा। 4-4 में क्या हो रहा है ब्राउन, मैंने वहाँ 3 अजनबी अफराद देखे हैं, रॉकी ने कहा। अजनबी अफराद और 4-4 में, ये क्या कह रहे हो, ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि 4-4 वो शोबा था जिसमें सिक्योरिटी सेक्शन भी आता था। ये जजीरे में ओपन जगह पर था ताकि बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरफ की सिक्योरिटी को कवर किया जा सके। वहां इसके दो आदमी मुस्तकिल रहते थे, मैंने खुद दूरबीन से देखा है। दो कवि हैकल हफ्शी और एक मकामी आदमी था। ये तीनों इंतहाई चौकन्ना अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। रॉकी ने जवाब देते हुए कहा, अभी तक तो मुझे कोई इत्तला नहीं मिली, मैं मालूम करता हूँ, ब्राउन ने तेज लहजे में कहा और क्रेडल दबाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वो अब मार्को को कॉल करना चाहता था, क्योंकि जिस जगह के बारे में रॉकी बता रहा था वहां से मशीन रूम करीब था। दूसरी तरफ से घंटी बजी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, एक आवाज सुनाई दी। ब्राउन बोल रहा हूँ, ब्राउन ने तेज लहजे में कहा। यस, मार्को बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। मशीन रूम में कोई गड़बड़ तो नहीं है? ब्राउन ने पूछा। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मार्को ने चौंक कर कहा। रॉकी ने अभी मुझे बताया है कि तीन अजनबी अफराद को मशीन रूम के करीब 4-4 में देखा गया है, और ये इन चार चार में से तीन अफराद हैं जिन्हें बेहोशी के आलम में ब्लू रूम में पहुंचाया गया था, ब्राउन ने तेज तेज लहजे में कहा। रॉकी को धोखा हुआ होगा, ब्लू रूम में से कोई कैसे निकल सकता है? वैसे भी मार्क और चीफ के साथ साथ वहां दोनों गंजे रॉकी और बैरो मौजूद हैं, इसलिए ऐसा सोचना ही हिमाकत है, दूसरी तरफ से मार्को ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, ब्राउन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। मार्को की बात ठीक थी, इसलिए वो मजीद भी क्या कह सकता था। अलबत्ता उसने मेज के किनारे पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे ऑफिस का दरवाजा खुला और एक लंबे कद और वर्दीसी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। शेरॉड, रॉकी ने इत्तला दी है कि 4-4 में तीन अजनबी अफराद देखे गए हैं, जबकि मशीन रूम वाले उससे इनकार कर रहे हैं। तुम हैरी को साथ लेकर 4-4 जाओ और चेक करो, और अगर कोई अजनबी अफराद मौजूद हो तो इन्हें मार गिराओ, ब्राउन ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, शेराड ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। ब्राउन ने टीवी बंद कर दिया था। उसके जहन में मुसलसल रॉकी की बात चुभ रही थी, लेकिन यहाँ बैठे बैठे वो कोई फैसला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आखिर में यही फैसला किया कि उसे ब्लू रूम में चीफ से खुद बात करनी चाहिए। इसने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से चीफ की तेज आवाज सुनाई दी। ब्राउन बोल रहा हूँ चीफ, सिक्योरिटी ऑफिस से, ब्राउन ने मुअद्दबाना लहजे में क्या कहा। यस, क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से लहजा मजीद सर्द हो गया था। चीफ, एंटी एयरक्राफ्ट गन इंचार्ज रॉकी ने इत्तला दी है कि तीन अजनबी अफराद जिनमें से एक मकामी और दो कवि हैकल हबशी हैं, 4-4 में देखे गए हैं। मैंने वहां मशीन रूम में कॉल किया तो मार्को ने बताया कि वहां कोई आदमी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद मैंने अपने सिक्योरिटी के दो अफराद को वहां भेज दिया है। फिर मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, ब्राउन ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, रॉकी को अब दिन में भी ख्वाब आने लगे हैं, उसकी आंखें निकालना पड़ेंगी, दूसरी तरफ से गुर्राते हुए लहजे में कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो ब्राउन ने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात थे। अपने साथियों के जाने के बाद इमरान ने कुर्सी पर मौजूद ग्रेट मैन की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हुए तो इमरान पीछे हट गया, और फिर उसने कुछ फासले पर औंधी पड़ी हुई कुर्सी उठाकर उस ग्रेट मैन की रॉड्स वाली कुर्सी के करीब रख दिया, और उसके साथ ही वो मुड़ा और उसने जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया, क्योंकि उससे खदशा था कि किसी वक्त भी कोई भी अचानक अंदर दाखिल हो सकता था और उसकी पुश्त पर फायर कर सकता था। दरवाजा लॉक करके वो वापस मुड़ा और आकर ग्रेट मैन के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद ग्रेट मैन ने कराहते हुए आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसके चेहरे पर यकलख्त शदीद तकलीफ के तासुरात उभर आए। तुम ना सिर्फ अच्छे अदाकार हो बल्कि अच्छे लड़ाके भी हो। बड़े तवील अरसे के बाद मैंने तुम्हारे हाथों शिकस्त खाई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। काश मैं तुम्हें शिकस्त दे सकता, न जाने तुमने क्या किया है कि इन कुर्सियों पर बैठने वाला तो सिर्फ सांस ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन हरकत कर ही नहीं सकता। लेकिन तुम शायद इंसान ही नहीं हो, तुमने ना सिर्फ रॉड्स खोल लिए बल्कि मुझ पर हमला भी कर दिया, और तुम्हारा साथी उसने तो इस कदर मजबूत रॉड को तोड़ दिया है, ग्रेट मैन ने रुक रुक कर कहा। तुमने जिस अंदाज में मुझ पर हमला किया और मुझे नीचे गिराने में कामयाब हो गए, मैं उसे अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, और मेरे दिल में तुम्हारी कदर में इजाफा हो गया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हलाक करूं और तुम्हारा यही हेडक्वार्टर तबाह करूं, क्योंकि तुम्हारे इस माफिया और मनशियात बिजनेस से पाकेशिया का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये भी मुझे मालूम है कि तुमने साइंसदान के बेटे का अगवा सिर्फ अपने दोस्त ब्लैक शेडो के जॉन विक्टर के कहने पर किया है, जबकि ये तुम्हारा धंधा नहीं है और अब मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं, इसलिए तुम मुझे वो जगह बता दो जहां मुखबिर शोकाई मौजूद है, मैं उसे साथ लेकर खामोशी से चला जाऊंगा, इमरान ने कहा। तुम मेरे साथ जो चाहे करो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जजीरे में हर तरफ मेरे आदमी मौजूद हैं। अलबत्ता अगर तुम मुझे छोड़ दो और वादा करो कि तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहाँ से जिंदा सलामत बाहर भिजवा दूंगा, ग्रेटमैन ने इस बार बड़े संभले हुए लहजे में कहा। ओके, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन तुमने ये चांस जाया कर दिया, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने कोट के अंदरूनी खुफिया जेब से एक तेज धार उस्तुरे नुमा खंजर निकाल लिया। मैं 3 तक गिनूंगा, इसके बाद तुम्हारी एक आंख निकाल दूंगा, फिर 3 तक गिनूंगा, फिर दूसरी आंख भी, फिर 3 तक गिनूंगा और तुम्हारी नाक काट दूंगा। इस तरह बारी बारी मैं तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा काटता चला जाऊंगा, अलबत्ता जहां तुम बता दोगे वहां मेरा हाथ रुक जाएगा, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि ग्रेटमैन कोई जवाब देता, इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और ग्रेटमैन का एक नथना आधे से ज्यादा कट गया। ग्रेटमैन की हलक से चीख सी निकली, लेकिन अभी उसकी चीख मुकम्मल ना हुई थी कि इमरान का हाथ दोबारा हरकत में आया और ग्रेटमैन का दूसरा नथना भी कट गया। मुझे मालूम था कि तुम जहन को ब्लैंक कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें अंधा होने के खौफ में मुब्तिला करके तुम्हारे नथने काट दिए हैं। अब तुम जहन को ब्लैंक करने के काबिल ही नहीं रहे हो, अब सब कुछ तुम खुद ही बता दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने ग्रेट मैन की पेशानी पर उभर आने वाली रग पर खंजर का दस्ता मार दिया। ग्रेट मैन के हलक से घुटी घुटी चीख निकली और उसके साथ ही उसका जिस्म बुरी तरह लरजने लगा। इमरान ने दूसरी जरब लगाई और ग्रेट मैन की आंखें मखसूस अंदाज में फैलती चली गईं, जिससे इमरान समझ गया कि अब इसका शऊर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और अब वो लाशऊर के तहत जिंदा है। इमरान ने फौरन इससे पूछताछ शुरू कर दी। ग्रेट मैन अब इस अंदाज में जवाब दे रहा था जैसे ट्रांस में आया हो या हिप्नोटिज्म का मामूल हो। इमरान ने तफसील से सारी मालूमात हासिल करके आखिरकार खंजर ग्रेट मैन की शहरग में उतार दिया। और फिर इससे पहले कि वो खंजर वापस खींचता, पास पड़े हुए फोन की घंटी बजी थी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ग्रेट मैन खत्म हो चुका था, उसकी आंखें बेनूर हो गई थीं, इसलिए उसकी तरफ से अब किसी किस्म की मदाखलत का इम्कान बाकी नहीं रहा। यस, इमरान ने ग्रेट मैन के लहजे में और आवाज में कहा, तो दूसरी तरफ से बोलने वाले ने बताया कि वो सिक्योरिटी चीफ ब्राउन है और उसे किसी रॉकी ने बताया है कि 3 अजनबी अफराद वहां देखे गए हैं। इमरान ने गो इसकी तसल्ली करा दी थी और फिर रिसीवर रख दिया, लेकिन अब उसे अपने साथियों की फिक्र लग गई थी। उसने बिजली की सी तेजी से खंजर वापस खींचा, उसे ग्रेट मैन के लिबास से साफ करके वापस अपनी मखसूस जेब में डाला और फिर तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में सनसनाहट सी हो रही थी, क्योंकि जो तफसील उसने ग्रेट मैन से मालूम की थी और फिर उसने ब्राउन ने जो कुछ बताया था, उससे तो यही जाहिर होता था कि टाइगर और उसके साथी शदीद खतरे में हैं और किसी भी लम्हे किसी भी तरफ से आने वाली गोलियां उन्हें यकीनी तौर पर चाट सकती हैं। इसीलिए इमरान तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गो इसके पास कोई असलहा नहीं था, क्योंकि असलहा उसके साथ ही ले जा चुके थे, लेकिन फिर भी वो जल्द अज जल्द अपने साथियों तक पहुंचना चाहता था। दरवाजे से बाहर आकर वो एक तंग सी राहदारी में दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर राहदारी का इख्तिताम जैसे ही एक दरवाजे पर हुआ, वो दरवाजे के अंदर जाने के बजाय तेजी से दाएं तरफ को मुड़ा और चंद लम्हों बाद वो नीचे जाती हुई सीढ़ियां उतरते हुए आगे बढ़ता चला गया। वहां रास्ते में अभी तक उसका टकराव किसी से नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के अख्ताम पर एक और तंग राहदारी में पहुंचा, तो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके कानों में फायरिंग की आवाजों के साथ साथ एक कड़बनाक इंसानी चीख पड़ी थी और उसे यूं महसूस हुआ था जैसे ये चीख टाइगर की है, इसलिए वो यकलख्त किसी मशीन की तरह दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। टाइगर, जोसेफ और जुआना इस ब्लू रूम से निकलकर तंग सी राहदारी में चलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हमें सबसे पहले मशीन रूम को तलाश करना है, क्योंकि क्योंकि यहाँ ऐसे आलात नस्ब हैं कि किसी भी वक्त छत से कोई रेस निकलकर हमें बेहोश या हलाक कर सकती है, टाइगर ने आहिस्ता से कहा। तुमने बॉस से मालूम किया है कि मशीन रूम कहाँ है, जोसेफ ने पूछा। मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त बॉस के साथ ही था जब उन्होंने हार्डी से पूछ-गछ की थी, और हार्डी सिर्फ अपने सेक्शन तक जानता था। उससे आगे जाने की उसे इजाजत ही नहीं थी, इसलिए जाहिर है इमरान साहब को भी इस बारे में कोई इल्म नहीं होगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो रुक गए, क्योंकि राहदारी का अख्ताम एक दरवाजे पर होता था जो बंद था। टाइगर ने पहले दरवाजे से कान लगाया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाजें सुनने की कोशिश की। अंदर कोई नहीं है, जोसेफ ने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा। और टाइगर ने भी इस बात में सर हिलाते हुए दरवाजे पर दबाव डाला। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए अंदर से बंद ना था इसलिए खुलता चला गया। ये खासा बड़ी बड़ा कमरा था, लेकिन इसमें सिर्फ काट कबाड़ पड़ा था। बड़ी बड़ी पेटियां थी जो खाली थी, ऐसी पेटियां जिनमें मशीनरी पैक करके लाई जाती थी। वो कमरे के अंदर खड़े गौर से इस कमरे को देख ही रहे थे कि यकलफ उन्हें छत पर से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी कुर्सी को फर्श पर घसीटा गया हो। फिर कदमों की भी हल्की सी आवाज सुनाई दी। हमें ऊपर जाना होगा, आओ, टाइगर ने कहा और तेजी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर आकर वो दाईं तरफ ऊपर जाती हुई सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। जोसेफ और जुआना उसके पीछे थे। सीढ़ियों के अख्ताम पर एक दरवाजा था जो बंद था, लेकिन वो भी लॉक्ड ना था। टाइगर ने दरवाजा खोला तो दूसरी तरफ एक खुली टेरेस थी जिसके बाहर आहनी जंगला लगा हुआ था। ये टेरेस घूमकर दूसरी तरफ जा रही थी। वो तेज तेज कदम उठाते इस टेरेस पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। इस टेरेस से दूर तक फैला हुआ जंगल साफ दिखाई दे रहा था। हेडक्वार्टर जजीरे के ऊपर बना हुआ था और ये टेरेस दूसरी मंजिल पर थी। टेरेस घूमकर एक दरवाजे पर खत्म हो गई। ये दरवाजा भी बंद था। टाइगर ने दरवाजे को दबाया तो ये भी खुलता चला गया। जाहिर है यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, इसलिए किसी दरवाजे को अंदर से लॉक करने की जरूरत नहीं महसूस की गई। ये कमरा ना था बल्कि तंग सी राहदारी थी। वो आगे बढ़ते चले गए और फिर एक दरवाजे के करीब पहुंच कर वो रुक गए। अंदर से ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे भारी मशीनरी चल रही हो। टाइगर ने आहिस्ता से दरवाजे को दबाया तो दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। टाइगर ने सर आगे करके झिरी में से झांका और फिर पीछे कर सर पीछे कर लिया। उसी लम्हे अंदर से फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। बोलने वाला मार्को था, और चूंकि उनके कानों में सिर्फ मार्को की ही आवाज आ रही थी, इसलिए जो कुछ मार्को ने कहा उन्होंने सुन लिया। तो वो सब बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि मार्को ने जो जवाब दिए उससे मालूम होता था कि उन्हें चेक कर लिया गया था। टाइगर समझ गया कि जब वो टेरिस से गुजर रहे थे तो उन्हें किसी और सेंटर या जगह से चेक कर लिया गया है, लेकिन चूंकि वो अभी यहाँ पहुंचे थे इसलिए अंदर मौजूद मार्को फोन करने वाले को बता रहा था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमें फुल एक्शन करना होगा, ये मशीन रूम है, टाइगर ने आहिस्ता से अपने साथ मौजूद जोसेफ और जुआना से कहा और इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। तुम यहीं रुकोगे जोसेफ, वरना कोई अकब से भी आ सकता है, टाइगर ने जोसेफ से कहा और जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जैसे ही रिसीवर रखे जाने की आवाज सुनाई दी, टाइगर जिसके हाथ में मशीन गन थी तेजी से दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ये एक वसी हॉल नुमा कमरा था जिसमें चारों तरफ मशीनरी थी। हर बड़ी मशीन के सामने स्टूल पर एक आदमी बैठा हुआ था, जबकि कमरे के दरमियान में एक बड़ी सी मेज एक मुस्ततील शक्ल की मशीन रखी हुई थी, जिसके सामने एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेज पर फोन भी नजर आ रहा था। खबरदार, टाइगर ने चीख कर कहा और उसके साथ ही उसकी मशीन गन ने गोलियां निकलना शुरू कर दी। जवाना ने भी अपनी मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और चंद ही लम्हों में वहां मौजूद 6 आदमी भी हलाक हो चुके थे और वहां मौजूद तमाम छोटी बड़ी मशीनरी भी पुर्जों की सूरत में कमरे में बिखर चुकी थी। यूं दिखाई देने लगा था जैसे ये कमरा पुर्जों का कबाड़ खाना हो। टाइगर ने ट्रिगर पर से हाथ हटाया और आगे बढ़कर उसने कमरे के आखिरी कोनों को चेक करना शुरू कर दिया। उसे खदशा था कि कहीं इसमें से किसी और कमरे का रास्ता ना हो या कोई दूसरा कमरा भी ना हो। चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो एक और दरवाजा तलाश करने में कामयाब हो गया। अभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि कमरे के बाहर से मशीन पिस्टल चलने की आवाज सुनाई दी और एक कर्बनाक इंसानी चीख सुनाई दी। जुआना और टाइगर दोनों तेजी से दौड़ते हुए कमरे से बाहर गए तो वहां बैरूनी दरवाजे के करीब ही एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसे जोसेफ ने गोली मार दी थी। उसके साथ ही एक और आदमी था जो वापस भाग गया था। जोसेफ ने कहा, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर दो, इस मशीन रूम के अंदर एक और कमरा है, उससे हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, टाइगर ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, और फिर वो तीनों ही तेजी से दोबारा मशीन रूम में दाखिल हुए और इस दरवाजे की तरफ बढ़ गए जिसे टाइगर पहले ही चेक कर चुका था। इस दरवाजे की दूसरी तरफ भी एक बंद राहदारी थी जो घूम कर आगे चली गई थी। वो तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो राहदारी में घूम कर आगे बढ़े तीनों ही अकलक थिटक कर रुक गए थे, क्योंकि आगे एक दरवाजा था जो खुला हुआ था और दरवाजे की दूसरी तरफ एक कमरा था जिसका सिर्फ एक हिस्सा उन्हें नजर आ रहा था, लेकिन वहां खामोशी थी। यूं लगता था कि ये कमरा खाली है, वहां कोई आदमी मौजूद नहीं। टाइगर आगे बढ़ा और चंद लम्हे दरवाजे के करीब रुककर सुनगुन लेने के बाद उसने मुड़कर जोसेफ और जुआना को आगे चलने का इशारा किया, और फिर वो तीनों ही यके बाद दीगरे तेजी से अंदर दाखिल हुए तो यकलक तेज फायरिंग की आवाजों से माहौल गूंज उठा, और उसके साथ ही टाइगर के हलक से एक कर्बनाक चीख निकली और वो एक धमाके से फर्श पर गिरा। कमरे में यकलक जलजला सा आ गया। जोसेफ और जुआना यकलक भूखे उकाबों की तरह उड़ते हुए इन दोनों आदमियों पर जा पड़े थे जो साइड दीवारों से लगे खड़े थे और जिनकी फायरिंग से टाइगर की कर्बनाक चीख मारकर नीचे गिरा था। जोसेफ और जुआना चूंकि चंद लम्हे बाद कमरे में दाखिल हुए थे इसलिए वो फायरिंग की जद में आने से बच गए थे। पलक झपकने के अरसे में ही वो दोनों आदमी चीखते हुए किसी तेज रफ्तार गेंद की तरह सामने वाली दीवार से एक धमाके से टकराए और फिर वो मुर्दा छुपकलियों की तरह नीचे गिरकर साकेत हो गए। जोसेफ और जुआना इन दोनों को उछालकर तेजी से मुड़े और उसके साथ ही वो फर्श पर पड़े टाइगर पर झुके, लेकिन दूसरे लम्हे इन दोनों के जिस्मों को एक जोरदार झटका लगा और इनकी आंखें खौफ से फैलती गईं। ब्राउन अपने ऑफिस में बैठा एक बार फिर टीवी देखने में मसरूफ था। चीफ से बात होने के बाद रॉकी की दी हुई इत्तला के तीन आदमियों को 4-4 में देखा गया है को इसने इसका वहम समझ लिया था। गोल्ड से शेराट को चेकिंग के लिए भेजा था लेकिन शेराड अभी वापस न आया था, हालांकि उसे गए हुए काफी देर हो गई थी। वो यही समझकर मुतमईन रहा कि शेराड को पूरे हेडक्वार्टर को चेक करने में बहरहाल काफी वक्त लग जाएगा। उसकी नजरें टीवी पर जमी हुई थी कि अचानक उसके कानों में दरवाजे के बाहर से किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। वो बेख्तियार चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। दूसरे लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और जो शख्स उछल कर अंदर दाखिल हुआ वो शेराट का साथी हैरी था, लेकिन हैरी के पीछे जो आदमी था उसे देखकर ब्राउन बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उसने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला ही था कि उसकी मेज के करीब खड़ा हैरी यकलख्त किसी गेंद की तरह उछल कर मेज के ऊपर से होता हुआ बराह रास्त ब्राउन से टकराया और वो दोनों ही रिवॉल्विंग कुर्सी के घूमने से एक दूसरे से लिपटे हुए नीचे गिरे, और ब्राउन ने अपने ऊपर पड़े हुए हैरी को साइड पर उछालने की कोशिश की और कुछ देर की जिद्दोजहद करने के बाद वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। इसके साथ ही वो तेजी से उठा ही था कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन को किसी आहनी शिकंजे में जकड़ दिया हो, और उसके साथ ही उसके मुंह से बेख्तियार एक घुटी घुटी सी चीख निकल गई और फिर उसके जहन पर जैसे किसी ने गहरे सियाह रंग का कम्बल डाल दिया हो। फिर यह सियाह कम्बल आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगा। फिर जैसे ही उसका शऊर जागा तो वो चौंक पड़ा कि वो अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके जिस्म को कुर्सी के साथ रस्सी से बांध दिया गया था, लेकिन कमरा खाली था, इसमें कोई आदमी मौजूद नहीं था। इसने नजरें कालीन पर डाली तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि इसके कदमों में हैरी की लाश पड़ी थी। वो पहलू के बल पड़ा हुआ था लेकिन इसका चेहरा ऊपर की तरफ को मुड़ा था। इसके चेहरे पर मौत के बाद भी शदीद तरीन तकलीफ के तासुरात थे, अलबत्ता आंखें बेनूर थीं। उसकी गर्दन जिस अंदाज में मुड़ी हुई थी उसे देखकर ही ब्राउन समझ गया था कि उसकी गर्दन तोड़ी गई है। ब्राउन ने एक तवील सांस लिया और फिर अपनी कुर्सी अपनी रस्सियों को चेक करना शुरू कर दिया। जो आदमी हैरी के पीछे अंदर दाखिल हुआ था उसे देखकर ही वो समझ गया था कि रॉकी की तला दुरुस्त थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि चीफ ने फिर क्यों गलत बयानी की। ये सब सोचने के बाद जब उसे अपने किसी सवाल का जवाब ना मिला तो उसने इन ख्यालात को झटक दिया। सबसे पहले वो इन रस्सियों से निजात हासिल करना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि इसे बांधने वाले किसी भी वक्त आ सकते हैं। अब वो न जाने इसे बांध कर क्यों छोड़ गए हैं, जबकि वो हैरी की तरह इसकी गर्दन भी आसानी से तोड़ सकते थे। उसे जिंदा रखने और कुर्सी पर बांधने का मतलब तो ये था कि वो इससे मालूमात हासिल करना चाहते थे। और फिर जैसे बिजली का कूंदा आसमान पर लपकता है, इसी तरह उसके जहन में झमाका हुआ। उसे मालूम था कि ये ग्रुप शोगरानी साइंसदान चियांग के अगवा शुदा बेटे की तलाश में यहाँ आया है, और ये बात सिर्फ उसे मालूम थी कि शोकाई कहाँ है, क्योंकि शोकाई को अगवा करने के बाद यहाँ ना लाया गया था, बल्कि चीफ के हुक्म पर वो खुद यहाँ से लौपेट गया था और उसने वहीं से वो ताबूत सांगर के आदमियों से वसूल किया था जिसमें वो लड़का बेहोशी के आलम में मौजूद था। लेकिन उसका मेकअप ऐसा किया गया था कि वो मुर्दा नजर आता था, और ये कहकर उसे यहाँ लाया गया था कि वो लौपेट ही है और इसको यहाँ लौपेट में ही दफन होना है। चीफ ने उसे कहा था कि इस ताबूत को लौपेट की कदीम कॉलोनी, जिसे सरसी कॉलोनी कहा जाता है, की कोठी नंबर 8 में पहुंचाना है। वहां एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर एंड्रियो उसे वसूल करेगा और वो खुद वहां से वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब ब्राउन ताबूत लेके सर सी कॉलोनी की कोठी नंबर 8 में पहुंचा तो वहां पहले से पुलिस और दूसरे अफराद मौजूद थे। ब्राउन को पता चला कि बूढ़े डॉक्टर एंड्रियो को रात किसी ने गोली मारकर हलाक कर दिया है, जिस पर ब्राउन अपनी स्टेशन वैगन जिसपे ताबूत मौजूद था लेकर वापस आ गया। अब वो परेशान था कि उसे कहाँ पहुंचाए। इसने सोचा कि वो फोन करके चीफ से बात करे। चुनाचा एक फोन बूथ से उसने ऐसा ही किया। चीफ ने उसे कहा कि वो इसे बंदरगाह पर एक क्लब जिसका नाम नाइट सी क्लब है के जनरल मैनेजर राल्फ को पहुंचा दे। चुनाचा उसने ऐसा ही किया और फिर वो वापस आ गया। उसके बाद उसका रास्ता ना राल्फ से हुआ था और ना ही वो यहाँ से फिर लौटा गया। अभी वो बैठा यही सोच रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला और वहां अंदर आदमी दाखिल हुआ जिसने उस पर हमला किया था। तुम्हें होश आ गया ब्राउन, आने वाले ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ और तुम यहाँ आजादी से कैसे घूम फिर रहे हो, ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे वाकई बेहद हैरत थी कि यहाँ हर तरफ इंतहाई हस्ताक्ष साइंसी आलात नस्ब हैं जो अजनबी अफराद को बेहोश कर देते हैं, लेकिन ये आदमी इस तरह यहाँ घूम रहा है जैसे वो इनका साथी हो और उसके बारे में बाकायदा पहले से आलात में फीडिंग मौजूद हो। यहाँ का मशीन रूम तबाह कर दिया गया है, मार्क और उसके सब साथियों को भी हलाक कर दिया गया है, और ये भी सुन लो कि तुम्हारे चीफ ग्रेट मैन भी हलाक हो चुका है, आने वाले ने कुर्सी पर बैठते हुए सपाट लहजे में कहा। तो ब्राउन बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तरबियत याफ्ता आदमी हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम ऐसी बातें करके मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैंने खुद ऐसे खेल बेशुमार बार खेले हैं, ब्राउन ने कहा। उसके जहन में वाकई ये ख्याल आया था क्योंकि जो कुछ ये अजनबी बता रहा था वो नाकाबिले यकीन था, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। तुम्हारी मर्जी, ना यकीन करो तुम, इससे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे तुम्हारी सहूलत के लिए बता दूं कि मेरा नाम अली इमरान है और मेरा ताल्लुक पाक एशिया से है, और मेरा एक साथी शदीद जख्मी हो गया है। मुझे उसकी इत्तला इस वक्त मिली जब मैं तुम्हें इस कुर्सी पर बांध चुका था, इसलिए मैं अपने साथी को चेक करने चला गया। इस वक्त इसकी हालत वाकई बेहद खराब थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम कर दिया, यहाँ एक मेडिकल बॉक्स मिल गया जिसकी मदद से मैंने इसका ऑपरेशन करके गोलियां निकाल दी और इसकी जान बच गई। अब इसकी हालत बेहतर हुई है तो मैं यहाँ आया हूँ। इस आदमी जिसने अपना नाम अली इमरान बताया था ने सादा से लहजे में खुद ही तफसील बताते हुए कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम यहाँ इस तरह इत्मीनान से क्यों बैठे हो, आखिर यहाँ क्या हो रहा है, ब्राउन ने इस बार इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, क्योंकि उसे अचानक ख्याल आया था कि ये शख्स जिस तरह मुस्तमईन नजर आ रहा था ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, इसलिए इसने ये बात कर दी थी। ब्राउन, मेरी तुम्हारे चीफ से तफसीली बात हुई है। उसने मुझे बताया है कि मुखबिर शोकाई को तुमने लोपैक में वसूल किया था। उसे एक ताबूत में डाला गया था, उसे मुर्दा जाहिर किया गया था, जबकि वो सिर्फ बेहोश था। शोकाई को रखने के लिए सर सी कॉलोनी की कोठी नंबर 8 में रहने वाले बूढ़े डॉक्टर एंड्रियो का इंतखाब किया गया था, क्योंकि डॉक्टर एंड्रियो को ऐसे मामला का माहिर समझा जाता था। लेकिन जब तुम डॉक्टर एंड्रियो तक पहुंचे तो वहां पुलिस वगैरह मौजूद थी, और डॉक्टर एंड्रियो को रात रात किसी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। बहरहाल, तुमने ग्रेटमैन को फोन करके बताया तो उसने ताबूत को नाइट सी क्लब के मालिक और मैनेजर रॉल्फ के सुपुर्द करने का हुक्म दिया, और फिर तुमने ताबूत को रॉल्फ के हवाले करके यहाँ वापस आ गए। क्या ये बात दुरुस्त है? इस शख्स ने कहा तो ब्राउन वाकई इसकी बातें सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि जितनी तफसील इस आदमी ने बताई थी उतनी तफसील सिवाय ब्राउन और चीफ के और किसी को मालूम नहीं थी। और उससे तो इसकी बात अब हो रही थी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि चीफ उसे ये तफसील बता सकता है। इसलिए उसे हैरत हो रही थी कि आखिर इस आदमी ने ये तफसील कहाँ से मालूम की होंगी। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ब्राउन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें बताया तो है कि ये सब कुछ मुझे तुम्हारे चीफ ब्रेडमैन ने बताया है, इंगार ने जवाब देते हुए कहा। मैं तुम्हारी ये बात तस्लीम ही नहीं कर सकता, ये कैसे मुमकिन है? ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा। वैसे उसे पूरा यकीन था कि ये सब कुछ ब्लफ है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब तुमने शोकाई को नाइट सी क्लब के मालिक रॉल्फ के हवाले किया था तो इस वक्त क्या वाकई शोकाई जिंदा था या नहीं? इमरान ने सर्द लहजे में कहा, और उसके सर्द लहजे से ही ब्राउन को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में सर्दी की तेज लहरें सी दौड़ती चली गई हों। जाहिर है जिंदा होना चाहिए, वरना हमने इसकी लाश का क्या करना है? ब्राउन ने बेसाख्ता और ना चाहते हुए भी कहा। क्या तुमने ताबूत खोलकर चेक किया था? इमरान ने पूछा। नहीं, मैंने उसे नहीं खोला और ना ही चेक किया, ब्राउन ने जवाब दिया। नाइट सी क्लब लोपैक में कहाँ मौजूद है? इमरान ने कहा। बंदरगाह पर मशहूर क्लब है, ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुमने इसके बाद कभी रॉल्फ से राब्ता किया है? इमरान ने पूछा। नहीं, मेरा इससे कोई राब्ता कैसे हो सकता है? जो राब्ता होगा चीफ ही का होगा, ब्राउन ने जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक कवि हैकल हफ्शी अंदर दाखिल हुआ। क्या रिजल्ट रहा जुआना? इमरान ने कवि हैकल हफ्शी से मुखातिब होकर कहा। हेडक्वार्टर से बाहर एक दरख्त पर बाकायदा केबिन बना हुआ था, जिस पर एंटी एयरक्राफ्ट गने और चारों तरफ में इंतहाई ताकतवर दूरबीनें नस्ब थी, और वहां 5 अफराद मौजूद थे। जोसेफ उनकी नजरों में आए बगैर इस केबिन पर पहुंच गया और फिर इन 5 अफराद को भी हलाक कर दिया गया। अलबत्ता एंटी एयरक्राफ्ट गने और दूरबीनें वहां मौजूद हैं। अब मजीद क्या हुक्म है? आने वाले ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। उन्हें वहीं रहने दो, जोसेफ के साथ मिलकर पूरे जजीरे का राउंड लगाओ। यहाँ इस ब्राउन के अलावा और कोई आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस मास्टर, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। टाइगर की क्या पोजीशन है? इमरान ने कहा। वो ओके है, जवाना ने मुड़ते हुए रुक कर जवाब दिया, और इमरान के इस बात में सर हिलाने पर वो मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। क्या क्या वाकई तुमने जजीरे पर कंट्रोल हासिल कर लिया है? क्या वाकई? ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि जिस तरह ये हफ्शी अंदर आया था और इसने रॉकी के बारे में जिस अंदाज में जवाब दिया था उससे तो यही जाहिर होता था कि ये लोग जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। छोड़ो, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। तुम्हें नाइट सी क्लब का फोन नंबर मालूम है? इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। नहीं, जब मेरा रास्ता ही नहीं तो फिर मुझे कैसे मालूम हो सकता है? चीफ को मालूम है, ब्राउन ने कहा। तुम्हारे चीफ को भी मालूम नहीं था, और दिलचस्प बात यह है कि लोपैक की इंक्वायरी में भी इस फोन का नंबर नहीं है, हद्दा के नाइट सी क्लब का नाम भी उन्होंने पहली बार सुना है। इस आदमी, इमरान ने कहा तो ब्राउन बेख्तियार उछल पड़ा। उसके जहन में हैरत की शिद्दत से झमाके से होने लगे। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा क्लब था, वो कहाँ गायब हो सकता है? ब्राउन ने बेसाख्ता लहजे में जवाब दिया। तुमने इस पर मौजूद बोर्ड पढ़ा था जिस पर क्लब का नाम लिखा हुआ था? इमरान ने कहा, हाँ बोर्ड नहीं बल्कि बड़ा नेविन साइन था जो मुसलसल जल बुझ रहा था, ब्राउन ने जवाब दिया। कितनी मंजिला था? इमरान ने पूछा। दो मंजिला, ब्राउन ने जवाब दिया। उसका बैरूनी मंजर बताओ, इमरान ने कहा तो ब्राउन ने तफसील बता दी। ओके अब मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुमने चूंकि तावुन किया है इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें रस्सियों से आजादी खुद हासिल करनी होगी। और ये भी बता दूं कि मुझे मालूम है कि यहाँ हेडक्वार्टर में इंतहाई हसास और खौफनाक असलहे का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, और हम इस जजीरे में वायरलेस चार्ज बम लगाकर जाएंगे और फिर इस पूरे जजीरे को तबाह कर दिया जाएगा। और अगर तुम इससे पहले यहाँ से निकल गए तो तुम्हारी खुशकिस्मती होगी, वरना तुम्हें भी यही मरना होगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। पार्ट 5 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।